มาพาเนี่ยยังไม่สุดสบายใจอากาศสมานุวาดีเลยมีตาดีประตูดีเลยऔर तारा समझो जितने भी पाठधारी एकत्र हैं सभी हैं मुताब हमारी मुक्ति में आ गए तब जब तुमने पा लिया ये कैसे ये तुमने किसके लिए कहा सारी शक्ति का बीज कौन है शक्ति है अनादि और अविनाशी और शक्ति है साकार तो साकार शक्ति का बीज कौन है इसका समूची शक्ति का बीज है जो मनुष्य शक्ति का बीज है क्योंकि मनुष्य भी साकार है शक्ति भी साकार है लेकिन वो मनुष्य शक्ति का बीज इस संसार में प्रत्यक्ष तब होता है जब आत्माओं का जो पिता है सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव वो उसमें प्रत्यक्ष होता है परमात्मा पार्ट प्रत्यक्ष होकर बजा तब वो प्रत्यक्ष होता है और जब प्रत्यक्ष होता है बच्चों के सामने नंबर वन तो बच्चे उसको अपनी मुक्ति में करते हैं प्यार के आधार पर प्रीति कहो योग कहो याद कहो पहचानते हैं मानते हैं और पा लेते हैं तो अगर सारी मनुष्य शक्ति का बीज मुक्ति में आ जाए जैसे कहने के सारा वृक्ष ही मुक्ति में आ गया जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही है बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते बाप कहते हैं बच्चे मन बनाओ तरीका बताया ईश्वर के मालिक कैसे बनूंगे तीन शब्द मत मना भव मत माना मेरे मना माना मन में भव माना समाज अर्थात मेरे मन के संकल्पों में समाज तुम अपने अलग से कौन संकल्प नहीं करो जो बाप का संकल्प तो बच्चे का संकल्प मैंने संकल्प मात्र भी किसी बात में विरोधाभास न हो संकल्पों में भी विरोध न हो वाचा से विरोध और कर्मेंद्रियों से विरोध ये तो बहुत बड़ी बात हो गई लेकिन संकल्प भी जो बाप का तो बच्चे का बात एक ही हो गई मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को हम सत्संग में जाकर क्या मिलता है इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहती हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं विश्व का मालिक और कोई बना ही नहीं सकता कौन बना सकता है इसे विश्व का मालिक बना सकता है सिर्फ बाप दादा विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण जी हैं और कोई हो नहीं सकता कौन से लक्ष्मी नारायण यह लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया। लक्ष्मी नारायण के चित्र में बाबा के बाजू में दो प्यास खड़े हुए, एक बच्चे के रूप में नीचे और दूसरा नौजवान के रूप में लक्ष्मी नारायण ऊपर ग्लडन थी। तो नीचे बच्चों की तरफ इशारा नहीं करते थे, जो नर से नारायण बनने वाले हैं, नारी से लक्ष्मी बनने वाले हैं, उनकी तरफ इशारा होता है। और गायन भी है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, नर से प्रिंस या नारी से प्रिंस बनने का गायन नहीं है। साथ ही विश्व का मालिक शिव बाबा भी नहीं हो सकता। बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, इसकी कहा जाता है जो सन्मुख बैठकर बाप से वर्षा लेते हैं। वर्षा देने वाला सन्मुख अलग हुआ और लेने वाला प्रैक्टिकल से अलग होना चाहिए। कैसे? देने वाला कौन और लेने वाला कौन? देने वाला है पारलौकिक बाप सुप्रीम कोर्ट, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। मैंने किसका बाप? मनुष्य आत्माओं का, मनुष्य जो है मनुष्यों का बाप प्रजापिता, मैं आत्माओं का बाप, आत्माओं का बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसे निष्काम सेवा कराने वाला और कोई नहीं होता कि मैं आत्माओं के बाप। क्यों? जिनको जिनको अपना रथ होगा उनको स्वार्थ जरूर हो, चाहे वो प्रजापिता ही क्यों न हो। और ये बात शास्त्रों में भी है, आते में दोनों में सच्चाई की शास्त्रों में भी है बताया है। सुर नर मुनि सब की हरि थी, स्वार्थ लाग कर सब प्रीति। ऐसा कोई मनुष्य मात्र नहीं है, चाहे देवता हो चाहे असुर हो, किसी कैटेगरी का भी कोई न कोई क्यों न हो, स्वार्थ सबको लगा रहता है। क्योंकि सबसे प्यारा होता है अपना शरीर, आत्मा। और शिव बाबा को अपना शरीर है ही नहीं, वो सुप्रीम सोल को अपना शरीर नहीं होता, वो तो दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है। तो उसको कोई अपने प्रति, अपने रथ के प्रति कामना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हर एक मनुष्य आत्मा को अपनी इच्छा का फल जरूर मिलता है। जो कोई कुछ करते हैं भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से, सोशल वर्कर को भी फल मिलता है सर्विस का, गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, और मैं नहीं बनता हूँ, मैं ही एक, माना कोई दूसरा नहीं है निष्काम सेवा करने वाला। तो एक कौन है, उसका स्वरूप क्या है? अगर शिव बाबा कहते हैं तो बाबा तो आत्मा और शरीर के मेल को बताया है मुरली में। बाबा साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। बाबा माना ग्रैंडफादर, तो वो एक बाबा जो साकार में निराकार है, का मेल है वो एक कौन, क्योंकि एक बिंदी के लिए कहें तो ये बात साबित नहीं होती निष्काम सेवाधारी एक बिंदी, क्योंकि बिंदी का पता नहीं लगेगा कौन सी बिंदी निष्काम सेवाधारी है, कैसे पता चलेगा। जरूर प्रैक्टिकल एक्ट में आएंगे तभी ही पता पड़ेगा। तो वो रूप कौन सा गहन है शास्त्रों ने, कोई रूप ऐसा है जो सब देवताएं स्वर्ग में दिखाए जाते हैं और उस रूप को स्वर्ग में नहीं दिखाया जाता, वो कौन सा रूप है। शंकर का रूप है बैगरी रूप, उनको सदैव कांटों के जंगल में ही दिखाया जाता है, कभी स्वर्ग में नहीं दिखाया जाता। तो मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाकर 21 जन्मों का सुख दे, मैं अपने निर्वाण धाम में भगवान प्रस्थ अवस्था में बैठ गया। ये कौन सा निर्वाण धाम हुआ। अगर शंकर का ही स्वरूप उस निष्काम सेवाधारी का रूप है तो वो बिना शरीर छोड़े परम धाम में कैसे बैठ जाए। इसलिए मुरली ने बताया तुम बच्चे परम धाम को भी इसी शक्ति पर उतार लेंगे। वो निराकारी स्टेज जो संगठित रूप में तुम बच्चों की बनेगी, वाणी से परे की स्टेज जिसमें वाणी चलाने की दरकार नहीं रहेगी, वाइब्रेशन मात्र एक दूसरे की बातों को कैच कर सके, तो ऐसा संगठन इस संसार में साकार संसार में जहां भी होगा वो सारी दुनिया की दृष्टि में समाया हुआ होगा, जिसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। वो तपस्या की स्टेज है, आत्मिक स्टेज की स्टेज है, आत्मिक स्थिति में सब नग्न रूप में बैठे हुए हैं, माना शरीर का भान, शरीर का भान नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं मैं रूहानी बाप हूँ, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, तो कोई बिंदु बिंदु को नहीं पढ़ाता, लेकिन आत्मिक स्टेज में रहने वाला आत्मिक स्टेज में रहने वालों को पढ़ाता है। देह अभिमानी तो पढ़ाई करेंगे ही नहीं, तनमुख भी नहीं आएंगे। तो वानप्रस्थ मूल वतन को कहेंगे। अब वतन जब यहां बना लिया है शक्ति पर तो उसे मूल कैसे कहेंगे। मूल माना जड़, बीज रूपी स्टेज, वो बीज रूपी स्टेज सबकी एक जैसी नहीं बन सकती। कोई तो बहुत सूक्ष्म स्टेज में स्थिर होने वाले होंगे और कोई उतनी सूक्ष्म स्टेज में परे से परे स्टेज में रहने वाले नहीं होंगे, क्योंकि जब परे से परे कहा जाता है तो जरूर नंबरवार पुरुषार्थ संसार होता है। तो मैं अपने निर्वाण धाम में वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ, वानप्रस्थ मूल वतन को कहा जाता है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे करके जाकर के सत्संग आदि करते हैं, तो यहाँ बाप वानप्रस्थ लेते हैं तो कहाँ बैठते होंगे। कयामत के समय में कयामत को बच्चे जो आत्मिक स्टेज में रहने वाले होंगे वो कहाँ से बैठ करके देखेंगे सारे विश्व का बिना। जरूर वो स्थान वही होगा जहाँ उसकी यादगार बनी हुई है, माउंट आबू। गुरु करते हैं ये मुक्ति का रास्ता बता दें। तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कब किसको नहीं बता सकता, अपने को ही गति सदगति नहीं दे सकते,
मन कोई आत्मा में इतनी ताकत नहीं है, विकारों के बंधन में इतनी आ चुकी है कि आत्मा गति सदगति को नहीं प्राप्त कर सकती। गति कहते हैं निराकारी स्टेज, और सदगति कहते हैं शरीर में रहने का भी अनुभव हो और दुख का अनुभव न हो, साकार शरीर भी रहे और दुख का अनुभव न हो लेकिन सुख का अनुभव हो। और इस गति सदगति की शुरुआत कहां से होती है? पहले मन बुद्धि की गति सदगति होगी या पहले शरीर की गति सदगति होगी? पहले सूक्ष्म चीज तैयार होती है, मकान का खाका पहले बुद्धि में खींचता है, फिर कागज पर बनाया जाता है, फिर स्थूल में तैयार होता है। तो गति सदगति की शुरुआत आत्मा जो मन बुद्धि कही जाती है उस मन बुद्धि से इसकी शुरुआत होती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा जब मनन चिंतन मंथन में टिकने लगे और देह के संबंधों से उपराम होने लगे तो समझा जाता है कि आत्मा गति सदगति की ओर चल पड़े। जब तक मनन चिंतन मंथन नहीं चलता तो समझो आत्मा डिफेक्टिव है, दुर्गति की ओर है। तो ऐसी सदगति और गति कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। मनुष्य जो भी ज्ञान सुनाते हैं उसमें कुछ न कुछ अपना मिक्स जरूर करते हैं। तो मनुष्य मनुष्य को सदगति नहीं दे सकता सिवाय परमपिता परमात्मा से रुके जो कि निष्काम सेवाधारी है। तो जो मनुष्य अपनी ही गति सदगति नहीं कर सकते वो दूसरों की गति सदगति कैसे देंगे? बाप आते ही है परम धाम से, वो वहां का रहने वाला है, तुम बच्चे भी वहां के रहने वाले हो, तुमको पार्ट बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर, बाबा को भी यहां आना है तुम बच्चों के लिए। जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जरूर नरक का विनाश होना ही है। अभी तुम जान गए हो जो बाबा ब्रह्मा द्वारा आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कहाँ है? जब द्वारा आया तो मीडिया हुआ ना, और मीडिया साकार में होता है या निराकार आकार में होता है? साकार शक्ति की स्थापना होनी है या निराकारी आकारी शक्ति की स्थापना होनी है? साकारी शक्ति की स्थापना होनी है। स्वर्ग साकार में बनेगा ना, और साकारी शक्ति पर ही बनेगा। तो जो बनाने वाला मीडिया है वो भी कहाँ चाहिए? साकार शक्ति पर चाहिए। जो गायन है ब्रह्मा द्वारा नई शक्ति की स्थापना, तो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, साकार मीडिया तो चला गया। इसलिए अव्यतवाणी में बोला हुआ है ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक मुधा हुआ है। ब्रह्मा के पाठ के बगैर शिव बाबा पाठ नहीं बजाय सकते। तो 69 में जब शरीर छोड़ दिया तो क्या शिव बाबा का पाठ बंद हो गया? नहीं, हम 70 की अव्यतवाणी ने भी इसका क्लेरिफिकेशन दे दिया कि वो साकार पाठधारी बाप अभी भी बच्चों के साथ है साकार में। इसका मतलब है कि जरूर कोई ब्राह्मण बच्चा है जिसने शिव बाबा प्रवेश करके पाठ बजाते। वो कौन सा बच्चा हो सकता? वही बच्चे जिनके लिए मुरली में बोला है, कोई बच्चे थे यज्ञ के आज में जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, दिल कराते थे, शिव बाबा उनकी उनमें प्रवेश करके मत देते थे ब्रह्मा सरस्वती को, वही बच्चे जो आदि में शरीर छोड़ गए, कारण या कारण ब्राह्मण जो एक बार बनता है उसका किया हुआ पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो दोबारा जन्म लेकर के आता है तो अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध लेकर आता है, तो वो ही आत्मा दोबारा यज्ञ में आती है और लास्ट को फंस जाती है और उनमें प्रवेश करके जो बाबा अपना पार्ट बजाते हैं, जो आदि तो अंत में जरूर प्रत्यक्ष होता है। इसलिए दो रथ बताए, एक टेम्पररी रथ का भी जिक्र आया है और एक मुकर्रर रथ का भी जिक्र आया है। उस मुकर्रर रथ की तरफ इशारा करते हुए मुरली में बोला है, ये तो शिव बाबा का रथ ही है जो स्वर्ग की स्थापना करता है। तो वो रथ कौन सा है जो स्वर्ग की स्थापना करता है? जरूर कोई रथ है जो आदि में भी था और अंत में भी होता है। बताए, तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे, फिर से बन रहे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर पांच चार वर्ष बाद हम आकर के फिर ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते वर्षा पाने के लिए। फिर माना क्या होता है? दोबारा। इसका मतलब ये भी कि आदि में भी कोई सैंपल हुआ था स्वर्ग का, हाँ हुआ था, उस समय उसका नाम क्या रखा गया? पाप स्थान है, ऐसा स्थान, पाक माना पवित्र। पाकिस्तान को पाक पवित्र स्थान कहीं है, जहाँ मिलिट्री शासन हमेशा ही बना रहता है, खून खराबा होता ही रहता है। नहीं, बाहर की दुनिया की बात नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर एक ऐसा पाकिस्तान के अंदर स्थान था जहाँ भले बाहर की दुनिया में खून की नदियां बह रही थी लेकिन उस संगठन के अंदर अमन चैन था। इसलिए मुझे बोला, नरक की दुनिया के बीच में तुम बच्चों को स्वर्ग कवर कर देता हूँ। 1947-48 में जब पाकिस्तान बना तो हिंदू मुसलमानों के बीच में खून रेजी हो रही थी, बाहर की दुनिया में खून खराबा हो रहा था और जो ब्राह्मण बच्चे थे वो बाप की रहबरी में बड़े शांत और सुख से बाहर चैन से रहते थे। जिसका मिसाल दिया है बिल्ली के पुंगरे, आवा में आग लगी और वो बच्चे सेफ सेफ रह गए। बताया, मैं आकर के देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करता हूँ, अब वो धर्म नहीं है तो फिर बनाना पड़े। तो आज सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करता हूँ और सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। भारत प्राचीन खंड है इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जाति होनी चाहिए, चाहिए फिर है क्यों नहीं? भारत देश में सबसे जाति मनुष्य क्यों नहीं है भारतवासी? क्योंकि दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में आती नहीं। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जाति बड़ा होना चाहिए, 5000 वर्ष से उनकी वृद्धि होती रहती, बाकी और तो आते ही हैं 2000 वर्ष के बाद। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय के बाद बौद्ध धर्म वाले आते तो उन्होंने थोड़ा फर्क होना चाहिए, उसमें तो 2500 वर्ष का फर्क है। तो इस्लामियों की आदम तुम्हारी कम होनी चाहिए, बौद्धियों की उससे कम। बौद्ध आदि पहले कम विकार में जाते हैं और इस्लामिक इतना भी जाति विकार में जाते हो क्योंकि तमो प्रधान है। तो ये हिसाब किताब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उनको ख्याल रखना पड़ेगा कि स्वर्ग में आबादी कम क्यों होती है और नरक में आबादी कम क्यों ज्यादा क्यों हो जाती है। किसी धर्म की आबादी कम है और किसी धर्म में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसका कारण क्या हुआ? व्यभिचार। सन्यासियों की आबादी बहुत कम, बौद्धियों की आबादी इस्लामियों से कम। क्यों? क्योंकि बौद्ध फिर भी आदि में संन्यास धर्म के होते हैं, नरगस्त में रहते हुए भी विकारों से उनका संन्यास होता है। तो श्रेष्ठ धर्म होने के कारण उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, कर्मेंद्रिया भी श्रेष्ठ होती है, भ्रष्ट आचरण करने वाली नहीं होती इतना जितना विदेशी धर्म विचार में आसक्त हो जाती। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उनको इन बातों का ख्याल करना पड़ेगा। आजकल लिखते हैं चीनी लोग सबसे जाति हैं। क्यों? चीनी धर्मखंड कौन सा धर्मखंड है? बौद्ध धर्मखंड। तो वो तो कम विचारी बने थे, आज से ही वो उतने विचारी नहीं होते। गाय के चित्र में दाई ओर का धर्म दिखाया गया है, बाम मार्ग का धर्म नहीं है। दाई ओर के जितने भी धर्म हैं, वो सब ब्रह्मचर्य को पोषण देने वाले हैं और विचार को नापसंद करने वाले हैं। तो फिर चीनियों की संख्या सबसे ज्यादा क्यों हो गई? हाँ, ये तो बौद्ध धर्म है तो श्रेष्ठ है, बुद्धिवादी धर्म है, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रभाव में आ गए। और प्रभाव माना प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। तो जिसके प्रभाव में आ गए उसी की प्रजा बन गए और उसी के अनुसार चलना पड़े। तो बौद्ध धर्म पहले गृहस्थ मार्ग वाला, घर गृहस्थ में रहते पवित्रता उनमें विशेष थी, लेकिन बाद में दूसरे धर्मों का जब प्रभाव पड़ा तो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणिया एक ही स्थान पर इकट्ठे होकर के रहने लगे, स्त्री पुरुष, और उनमें व्यभिचार फैल गया। तो विदेशी संस्कृत के प्रभाव से भारतवासी गिरे हैं। तो चीनी लोगों को ये पता नहीं है क्योंकि सृष्टि का ज्ञान तो है। दूसरा प्रयोग, ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है, है? और नटखट में किसको समझाना होता है? जितने विचार बुद्धि नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, बूढ़ी माताएं हैं, तो उनको कुछ नहीं याद रहता है तो क्या कहते हैं? बाप और वर्ते को याद करो। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए हैं, तो उस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्ध भी बहुत बने, यहाँ भी बौद्ध बहुत है, बहुत है जो हिंदू से बौद्ध भी बन गए, और क्रिश्चियन तो बेशुमार। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लैंग्वेज में डाल देंगे। अभी तुम जानते हो आज सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर स्थापन हो रहा है, ये भी समझ होनी चाहिए। क्या कि देवी देवता सनातन धर्म कोई मनुष्यों की मत पर स्थापन नहीं हो सकता? देहधारी गुरु को साकार तत्व का बनाया
तो देखते देखते पाठधारी परमात्मा ही श्रेष्ठ मत देने वाला है। वो स्त्री से एक सौ आठ है, देवता ही श्रेष्ठ मत देने वाली नहीं है। तुम इस बात को जानते हो कि श्रीमत पर देवता धर्म स्थापन होता है। कोई मनुष्य के गुरु मनुष्य गुरु की मत पर ये देवता धर्म स्थापन नहीं हो सकता। धर्म तो गाये जाते हैं ना, यहाँ के मनुष्य अपन को हिंदू की लाइन में ले जाते हैं, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है, आर्य और अनार्य, भारतवासी पहले पहले आर्य थे, आर्य मानस थे, अब अनार्य बन गए। अनार्य कहो या अनार्य कहो, कैसे अनार्य आर्य और अनार्य, अनार्य से बिगड़ के क्या हो गया अनार्य। पहले भारतवासी बहुत बुद्धिमान, अब अनार्य बन गए हैं, अनार्य बन गए, कोई अकल नहीं। जिसको जो आता है वो धर्म का नाम रख देते, जाड़ की पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते चार टहनियां निकलती रहती, नहीं का पूरा मान होता है। क्यों मान होता है, नहीं धर्म का मान क्यों होता है, नई टाली जो निकलती है उसका मान होने का कारण क्या, उस समय तत्व प्रधान होती है, बाद में सभी धर्म तत्व रजो तमो में आते। दुनिया की हर चीज इन चार वस्तुओं में से जरूर पता होती है। अभी तुम जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का बर्तन ले रहे, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना ध्यान करना चाहिए, ऐसे बाप को जिससे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, किससे मिलता है, बिंदु से। मुरली ने इसलिए क्लैरिफिकेशन दिया है, निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए, बस मुक्ता है। निराकार से तो जरूर ज्ञान रत्नों का निराकारी वर्षा मिलेगा, लेकिन चाहिए कौन सा, विश्व की बात चाहिए तो साकार में चाहिए ना, तो जरूर बीच में दलाल साकार से होना पड़ेगा। लौकिक बाप से धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पति तो बनने का भी वर्षा मिलता है, परंतु ये बाप तो पति का पावन है। तुम जितना उस पति का पावन बाप को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन भी बनेंगे। तो वो है लौकिक बाप और वो है पारलौकिक बाप। इस पारलौकिक बाप से धन का भी वर्षा मिलता है और पवित्रता का भी वर्षा मिलता है, और से धन का वर्षा मिलता है जिससे हम वर्षा लेते हैं, उसमें निराकार भी समाया हुआ है तो साकार भी समाया हुआ है। तो निराकारी वर्षा ज्ञान रत्नों का भी मिलता है। ज्ञान रत्न जिसके पास होते हैं वो कभी भी कहीं भी भूख नहीं मर सकता, क्योंकि निराकारी बाप का वर्षा है। ज्ञानी जहां भी बैठ जाएगा वहीं उसकी पूजा होगी, क्योंकि निराकारी बाप के वर्षे का हकदार बन गया। इसलिए मुरली में बोला है तुम बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते। तो धन का भी वर्षा मिलता है उस पारलौकिक बाप से, जो ज्ञान रत्न रतन है वो ही स्थूल रतन बन जाते हैं और पवित्रता का भी वर्तन होते हैं, क्योंकि ज्ञान है जल। जैसे जल से कपड़ा साफ होता है, वैसे इस ज्ञान सूक्ष्म जल से क्या साफ होता है, शरीर रूपी वस्त्र भी साफ हो जाता है। मन बुद्धि का मैल तो साफ होता ही है, पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा पवित्र बनती है, और जिसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा पवित्र बन जाएगी तो उसके संकल्प शुद्धि जरूर होगी। संकल्प शुद्धि होगी तो वाचा की भी शुद्धि होगी, और वाचा की और संकल्प की शुद्धि होगी तो कर्मेंद्रियों में भी शुद्धि जरूर आएगी, तो शरीर भी पवित्र बन जाता है। तो ये बीच में है अलौकिक बात, इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। कौन सी दोनों तरफ से कौन दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है, सुरक्ष की ओर से और नर की ओर से। ऐसा श्याम सुंदर का पार्ट और बजाने वाला किसी धर्म में होता नहीं है। ऐसा काले से काला भुजंग और ऐसा गोरे से गोरा पार्ट बजाने वाला और किसी धर्म में नहीं होता धर्म का, जैसा श्याम सुंदर का गए। पर सुगंधी से श्याम सुंदर का अर्थ गलत लगाई है क्या? वो समझते हैं कि इस जन्म में इस शरीर से है श्याम दादा लिख रहा है, और अगले जन्म में सचिव में होगा सुंदर। तो श्याम सुंदर एक व्यक्तित्व का नाम, एक पर्सनालिटी का नाम है या दो पर्सनालिटी का नाम है? दो पर्सनालिटी। श्याम सुंदर एक का नाम है या दो का? एक का नाम है ना, तो एक पर्सनालिटी होगी तो शरीर भी एक ही होगा। एक ही शरीर पहले तत्व प्रधान सुंदर होता है, वो पहले श्याम होता है, फिर बाद में वो साथ करते करते सुंदर बनता है। तो दादा देख रहा है कि ये गाय नहीं है, दादा देख रहा है कि स्वरूप का ये श्याम सुंदर का गाय नहीं है। हाँ, दादा देख रहा है ब्रह्मा की ये सोल कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है, प्रवेश करके पहले काला पाठ बजाती है, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, भयंकर पाठ बजाती नाम शास्त्रों में गए हुए महाकाल और सैगुनी शक्ति कौन महाकाली, ये सबके माई बाप है। जो बुरे से बुरे कर्म करने वाले हैं उनके भी ये माई बाप है। ब्लैक वे में भी बाप, तो व्हाइट वे में भी बाप। मुरली में क्या बोलते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ, क्यों बोलते हैं ऐसे? इसीलिए बोलते हैं कि तुम अगर अच्छे बनोगे तो बाप तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा पार्टधारी बनेगा, और तुम अगर खराब पार्ट बजाओगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो समझ लो ये तुम्हारा बाप आया हुआ है। उस अर्थ में भी बाप है, तुमको सुधार करके ही छोड़ेगा। इसलिए गायन है करण करा बना, पहले सहज पाठ बजाते हैं, मधुर पाठ बजाते हैं कर्ण हार कर, ताकि बच्चे सहज रूप में देख करके समझ लें, क्योंकि साकार को देख करके समझना और चलना आसान होता है। बुद्धि योग से कर्मों को खींचना वो थोड़ा कठिन होता है। बुद्धिवादी आत्माओं को ये खास काम दिया जाता है कि बुद्ध योग से खींचो, क्योंकि उनमें भावना कम होती है, बुद्धि ज्यादा लड़ाते हैं। रावण को तो सिर दिखाए जाते हैं और विष्णु को एक सिर दिखाया जाता है, अंतर ये क्यों? क्योंकि विष्णु बनने वाली आत्माएं अपनी बुद्धि नहीं चलाती, एक मत पर चलने वाली होती है, और रावण अनेक मतों पर चलने वाला होता है। इसलिए अनेक मतों के कारण उसको रावण मत कहा जाता है, रुलाने वाली मत। जैसे कोई आदमी कोई रास्ते पर जा रहा हो और एक व्यक्ति मिले कि तुम इस रास्ते पर चलो, भटकाई दिया। फिर दूसरा मिला, इस रास्ते पर चलो, फिर भटकाई दिया। फिर तीसरा मिला, नहीं इस रास्ते पर चलो तो तुम्हें मंजिल मिलेगी। तो भटकता है तो एक है साधे सात सद है, एक में बहुत ताकत है, तो बीच में इसको जोड़ दिया है। किसको? अलौकिक रथ, अलौकिक बात। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। गाली क्यों खानी पड़ती है? गाली खाने का क्या काम? अरे कृष्ण काले को गाली क्यों खानी पड़ी है? काले कर्म किए होंगे तो गाली खानी पड़ेगी, बुरे कर्म होंगे तो गाली नहीं खा सकता। लक्ष्मी नारायण की कई शास्त्रों में बुराई है, नारायण को कोई गाली देता है? नारायण की शास्त्रों में भी कोई गाली नहीं। क्यों? क्योंकि नारायण जब बन जाता है, संपूर्ण बन जाता है, तो गाली देने का कोई सबक ही पैदा नहीं होता। तो हम बच्चे भी जब लक्ष्मी नारायण समान बन जाएंगे तो हमारे सामने कोई भी विरोध करने वाला नहीं आ सकता, गाली भी कोई नहीं दे सकता। तो बताएं, जो बाबा को कोई तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ सारी किसको होती है? इस तरह से प्रवेश करते जो भी तरह से आए आए इस सृष्टि पर, वो सचो प्रधान आत्मा आती है, उनको कोई तकलीफ नहीं देनी पड़ती। जैसे क्रैस्ट को सूर्य पर चढ़ाया गया तो क्रैस्ट की आत्मा जो ऊपर से आई उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ किसको देनी पड़ी? जिसे, जिसने प्रवेश किया। तो ऐसे शिव बाबा को कोई तकलीफ नहीं होती, वो जिस तन में आता है उसको ग्लानी का दर्द झेलना पड़ता है। वास्तव में कृष्ण को कोई गाली नहीं मिलती है, बीच में आता है ये है। कृष्ण तो मृदुल पाठकारी आत्मा है। कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण खाता है, गाली खाने के लिए ये खाता है। अलौकिक बात को ही सहन करना पड़ता है, ये किसको पता ही नहीं है कि शिव बाबा इसमें प्रवेश करके आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव बाबा आकर के पतितों को पावन बनाते हैं, आकर के ऊपर बैठे बैठे नहीं बना सकते क्या? क्यों? देवता है, पावन थे, पावन से पतित कैसे बने? स्वर्ग में देवताएं जो पावन थे वो पतित कैसे बन गए? दूसरे धर्म की जो आत्माएं आई ढेर की ढेर, उनके संग के रंग में आकर के जो पावन देवताएं थे वो भी पतित बन गए। क्योंकि दूसरे धर्म वालों में अब भी विचार की बात उनकी बुद्धि में होती है, और देवताओं में देवताएं तो होते ही हैं। अब भी विचारी राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी, किसी दूसरे में दृष्टि मात्र भी विचार नहीं हो सकता। तो दूसरे धर्मों में तो इस बात का कोई ख्याल भी नहीं है, उनके स्वप्न में भी ये बात नहीं आ सकती कि ऐसी भी कोई दुनिया हो सकती है। तो ऐसों के संग के रंग में आकर के भारतवासी नीचे गई, तो बड़ी महिमा है संग की। और संग, संग तो जरूर साकार से ही होता है। साकार में प्रैक्टिकल में रसगुल्ला खाया होगा तो रसगुल्ले की याद जरूर आएगी। जिन्होंने प्रैक्टिकल में मुक्ति, जीवन मुक्ति रूपी स्वर्ग भोगा है, वो आत्माएं ही उसके लिए पुरुषार्थ करेंगी। और जिन्होंने वो रसगुल्ला खाया नहीं, उनको पता ही नहीं, वो पुरुषार्थ भी वैसा नहीं करेंगे। तो साकार में ही संग का रंग लगता है। अनेकों का संग का रंग लगने से नीचे गिरे, पतित बने, इंद्रियों से भी भ्रष्ट बन गए। भ्रष्टाचारी माना भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले बने, तो कृष्णाचारी कैसे बनेंगे? जब एक का संग करेंगे तो आप देवीचारी बन जाएंगे, देवताएं बन जाएंगे। तो पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। जब पति का पावन बाप आकर के पावन बनाते, बाप कहते मैं आया हूँ सब को वापस ले जाने के लिए, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर होना चाहिए, विनाश बिगड़ सुख शांति कैसे होगी? जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि करते हैं कि लड़ाई बंद हो जावे, और इस यज्ञ में क्या होगा? इस ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया सहा हो जाएगी, तब इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। ये क्या कहेंगे? विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई, जो सारी दुनिया को लपेट में ले लेती है। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ रचते हैं कि लड़ाई बंद हो, ब्राह्मण कुल भूषण जानते हो बिना सुधरू होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खोलेंगे? क्या कहा? गेट वे टू हैवन इज महाभारत, महाभारी महाभारत युद्ध न हो तो स्वर्ग के द्वार नहीं खोल सकते, विनाश न हो तो स्थापना प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। जितने भी धर्म पिताएं आए वो सुख की सृष्टि क्यों नहीं बना पाई? दुनिया नीचे ही क्यों गिरती रही? नरक ही क्यों बनती गई? कारण क्या हुआ कि उन्होंने अपने धर्म की धारणाओं की स्थापना तो की, लेकिन पुरानी मान्यताओं का, पुराने धर्मों का, पुरानी धारणाओं का विनाश नहीं कर सकते, इसलिए वो स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकते। अंततः दुनिया नरक ही बनती चली गई। तो स्वर्ग के गेट खोलने के लिए विनाश होना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्वर्ग की स्थापना प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। लेकिन सब तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वो ही बने, बाकी जाएंगे मुक्तिधाम। ये किसको पता नहीं है, इसलिए कितना डरते हैं इस बात से विनाश, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, पीस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, और दुनिया वाले ब्राह्मणों की संग में दुनिया में हर बात की सूचना होती है, वो समझते हैं हमें ही पीस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया में शांति स्थापन कर लेंगे, लेकिन ये मनुष्यों का काम नहीं है। तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुखधाम शांति धाम कैसे स्थापन हो रहा है, विनाश के सिवाय स्थापना हो ही नहीं सकती। तुम अभी त्रिकांडी बने, क्या जानते हो कि जब तक इस दुनिया का विनाश नहीं होगा तब तक स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता। क्यों? कारण क्या? अरे दुनिया में है 500 करोड़ मनुष्य, और मनुष्यों की तो बुद्धि चलती ही है, या राइट वे में चले या रॉन्ग वे में चले, मनुष्य ही वाइब्रेशन बनाता है, मनुष्य ही वाइब्रेशन बिगाड़ता है। वाइब्रेशन वायुमंडल के आधार पर दुनिया के सब प्राणी कंट्रोल होते हैं, क्योंकि उनमें मन बुद्धि नहीं प्रधान, और मनुष्य में मन बुद्धि प्रधान है, तो मनुष्य का मन परिवर्तन हो सकता है ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर, लेकिन सब का तो परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सब तो जीवन मुक्ति में जा रहे नहीं है, स्वर्ग में नहीं जाते, मुक्ति धाम में जाने वालों की संख्या ज्यादा है और जीवन मुक्ति में जाने वालों की संख्या बहुत कम है। जीवन मुक्ति भी मैं भी कैटेगरी से, कोई 21 जन्म की संपूर्ण जीवन मुक्ति पाने वाले, माना जीवन के रहते रहते ही दुख दर्दों से मुक्ति प्राप्त करते हैं, और कोई ऐसे है कि जीवन उनका छूट जाता है, सिर्फ धारण करते हैं और अनेक जन्मों की मुक्ति और जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति धारण करते हैं। तो जीवन मुक्ति पाने वाली आत्माएं तो बहुत थोड़ी है, और उनके मुकाबले जो मुक्त होने वाली आत्माएं हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जब तक उनके शरीरों का विनाश नहीं होगा तब तक स्वर्ग प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गंदे वाइब्रेशन फैलाने वाली आत्माएं मनुष्य इस दुनिया में बहुत ज्यादा है, और वो गंदे वाइब्रेशन जब तक फैलते रहेंगे तब तक वही हालत होती रहेगी जो बाबा बताते हैं कि बच्चे मेरे सन्मुख आते हैं तो बहुत ऊंची स्थिति में चढ़ जाते हैं और माउंट आबू से नीचे उतरे और नकार खराब हो जाते। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया का वाइब्रेशन बहुत खराब है, और बोला भी है कि दिन प्रतिदिन दुनिया में गंध बढ़ता ही चला जाएगा। आखिरी ये हालत हो जाएगी कि बच्चे बाहर की दुनिया में रह नहीं सकेंगे, कहां भागेंगे? बाप के पास भाग खड़े होंगे। अभी भी मन बुद्धि से बाहर की दुनिया में बच्चों को अच्छी नहीं लगेगी, उनकी मन बुद्धि कहां रखी रहेगी? मधुबन में बाप के पास रखी रहेगी। तो तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र तुमको ज्ञान का मिला है। वो तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो गए, अर्थात तो कोई लड़े नहीं, ये पीस हो जाए। सब कहते हैं बनने सो जाए, सब मिलकर के, सब धर्म मिलकर के एक हो जाए। एक बाप की मत ले कि सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं, तब तो बनने सो जाएगी। ये प्रैक्टिकल में होगा या सिर्फ कहने मात्र से हो जाएगा एक बाप के बच्चे? प्रैक्टिकल में बाप भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल में बच्चे भी होना चाहिए। इसलिए मुरली ने यह प्रश्न किया है, उन ब्राह्मणों से पूछो तुम अपने को ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा मुखवंशा वाली ब्राह्मण कैसे हो, तो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है? जब ब्रह्मा बाप का ही पता नहीं, वो सूक्ष्म बदन में उड़ गया तो वर्णस कहाँ पैदा होगी? इस दुनिया में वर्णस पैदा हो सकती है? फिर नहीं पैदा हो सकती। जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये कहावत भी कहाँ से है? इस दुनिया में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक नहीं हो सके, फिर ये कहावत कहते कहाँ की है, यादगार कहाँ की है? जरूर इस सृष्टि पर परमात्मा बाप प्रैक्टिकल में आया है, और आकर के उसने इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म और देवता धर्म, सनातन धर्म, इनकी जो मूल बीज रूप आत्माएं हैं उनको आकर के भाई भाई बनाया। चार मुख्य धर्म हैं, चारों धर्मों के जो मूल बीज हैं वो एक बन जाते, एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई प्रैक्टिकल में बनते हैं, तब ही भ्रातृत्व भावना पैदा होगी, अन्यथा पैदा नहीं हो सकती। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। क्या कहा? वर्तमान की स्थिति देखना चाहिए। अगर ब्रह्मा के चार पुत्र माने गए हैं सनक सनातन सनंदन सनक कुमार, अगर चारों पुत्र आपस में लड़ते हैं, चाहे वाचा से लड़ते, चाहे संकल्पों से युद्ध करते हैं और चाहे कर्मेंद्रियों से हाथापाई करते हैं, तो क्या कहा जाएगा एक बाप के बच्चे बने? नहीं कहा जा सकता। तो लड़ना नहीं चाहिए आपस में, ये भी तो सत्य में नहीं कहा। वहां कोई भी आपस में लड़ते नहीं, वो तो सत्य की बात हो गई। यहाँ तो है कलयुग, बरोबर सत्य में देवी देवताएं थे, बाकी सारा बात में कहा थी वो पता ही नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो एक ही बनने का राज था। मन मूल वतन जाते हैं तो भी कुछ यहाँ रहते हैं, कुछ मन नौ लाख सितारे जो गाए जाते हैं चमकने वाले कयामत के समय में, वही परमात्मा के गले के असली हार लगते हैं। इसलिए नौ लाख हार गाया हुआ है, तो कहा 500 करोड़ और कहा 9 लाख, तो कुछ ही कही गए। तो सर परम धाम में सब जाकर के इकट्ठे नहीं होते, कुछ यहाँ रहते हैं। एक राज्य से सतयुग में निकाल बांस की शांति थी। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बरूबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। एक ही धारणा थी सबकी, जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प था। ये ज्ञान किसको ले, इस समय तुम नाले से कुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वो तुमको बताए, सिर्फ सिद्ध व्यक्ति की चाबी आपके पास रहती है, तुम फिर विश्व के मालिक बनते हो। कुछ बच्चों को बड़ा बनाया है, कुछ अपने को। फर्क सिर्फ ये है कि दिव्य दृष्टि की चाबी और किसी को नहीं देगा, ये मेरे पास रहती है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे बहुत काम करना पड़ता है, इसलिए ये चाबी मैं तुमको नहीं दे सकता। सभी जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है, कहते हैं ना अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ करके समझाते हैं। बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, जब देवता बनते हैं तो आखिरी शक्ति का विनाश जरूर होगा। क्या कहा, पहले विनाश होगा कि पहले देवता बनेंगे? पहले स्थापना होती है देवता धर्म की, वो राजधानी जब तक स्थापन नहीं हुई है भले छोटे रूप में क्यों न हो, राजधानी में सबसे पहले कौन चाहिए? पहले तो महाराजा महारानी चाहिए। वो महाराजा महारानी अपनी छोटी सी फैमिली के माध्यम से जब तक प्रत्यक्ष नहीं होते तब तक विनाश नहीं हो सकता। चारों तरफ हाहाकार मच जाना है, बुद्धि समझ सकती है, नेचुरल कैलमिटीज आनी है, मूसलाधार वर्षा भी होनी है, इन सब का विनाश हो तो सत्य की स्थापना हो। सब का मन किनका, जो भी दूसरे दूसरे धर्म है, जो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे आदि खोले बैठे हैं, ये अनेकता खलास हो जाए, अनेक मत खलास हो और एक मत की स्थापना हो। कहां, बाहर की दुनिया में? पहले ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में ऐसा हुई। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञानी की में ये सब स्वाहा हो जाएगा, 5 तत्वों को भी खाद मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है, भक्ति मार्ग में देखो रुपये भी कैसे बनाते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे साढ़े ग्राम बहुत बना करके पूजा करके फिर मिटाई देते हैं। टेलीग्राम छोटे छोटे बनाते और लिंग लिंग बहुत बड़ा बनाए देते, क्यों कहा की यादगार है? जरूर संगत युग में ऐसे पीरियड की ही यादगार है शास्त्रों में, जो भक्ति मार्ग में चली चली आ रही है। छोटे छोटे टेलीग्राम का मतलब छोटा पार्ट बजाने वाले, और बड़ा लिंग बनाने का मतलब बड़ा पार्ट जिसने बजाया आत्मिक स्टेज में रहने का प्रैक्टिकल पार्ट, क्योंकि वो परमात्मा है एवर प्योर। एवर प्योर को भी दुनिया तब तक नहीं मानेगी जब तक उसका प्रैक्टिकल प्रूफ ना हो। आखिर एवर प्योर कैसे है? तो लिंग बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटी छोटी बनाते हैं, फिर पूजा करके उनको मिटाई देते हैं। क्या मिटाई देते हैं? जो मिट्टी के शालिग्राम बनाए उनको तोड़ देते हैं। मिट्टी माना देह अभिमानी की मिट्टी। फिर रोज बनाते हैं और रोज तोड़ते हैं, माना रोज रुद्रिय की रखते हैं और रोज शालिग्रामों को और शिवलिंग को तोड़ते रहते हैं। तोड़ने का मतलब क्या हुआ है? सोमनाथ के मंदिर को भक्ति मार्ग में पत्थर को तोड़ दिया वहां, और यहां छुट्टी क्या होती है? मनुष्य को कैसे तोड़ा जाता है? अगर उसका दिल टूट जाए तो क्या कहेंगे? टूट गया। टूट गई है माला मोती, बिखर गए,